Good evening, listeners, and welcome to this Sunday evening edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444-2331-0464, and our third dedicated line is 2342-1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra ke saath hum hazir hain. Aaj ravivar hai aur har ek ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2342-1050. हमारा तीसरा नंबर है 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. और पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं एस रंगवाश्यम.
थैंक यू अमरीश. द टॉप स्टोरीज. एज मेनी एज 211 कंपनीज टू अनाउंस क्वार्टरली नंबर्स नेक्स्ट वीक. Global gold prices declined 2.2% this week after 6 weeks of continuous surge. And the Ministry of Mines to hold Critical Minerals Summit in New Delhi tomorrow.
लगभग 211 कंपनियां अगले सप्ताह अपने तिमाही परिणामों की घोषणा करेंगी. लगातार 6 सप्ताह तक बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस सप्ताह 2.2% की गिरावट दिखाई दी. और खान मंत्रालय कल राजधानी में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा.
And of all the details, well, it's the earnings season, and as many as 211 companies will announce their quarterly results next week, including some major names like Kotak Mahindra Bank, DMart, Ultratech, Cement, Indian Oil and Titan. As per the result announcement calendar next week, Ultratech Cement, UCO Bank, Tata Chemicals, PNB Housing, Gillette India and Birla Soft are among others will announce their earnings on Monday. On the 30th of April, Indian Oil, REC, Havells India, Indus Towers, Central Bank of India, PNG, Castrol India will announce next. Ambuja Cements, Adani Wilmer will announce their results on Wednesday. Adani Ports, Coal India, Dabur India, Federal Bank, Railtel and SIAT will declare their results on Thursday. Titan, Britannia, Godrej Properties, Tata Tech, Raymond Steel Exchange India will announce results on the 3rd of May. And Kotak Mahindra Bank, Avenue, Supermarts, IDBI Bank will release their quarterly numbers on Saturday.
और इस बीच दिल्ली से हमारे आज के कार्यक्रम के पहले श्रोता योगेश जी जुड़ चुके हैं. योगेश, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
जी नमस्कार सभी को. नेहा जी को भी नमस्ते.
नमस्कार
नेहा जी, मेरा सवाल ये है कि ये एक स्ट्रेस टेस्ट हुआ था बीच में म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सेबी द्वारा करवाया गया था, तो उसके क्या आउटकम निकले हैं और उससे रिटेल इन्वेस्टर को क्या सबक लेना चाहिए. दूसरा मेरा एक सवाल है कि निकॉन का स्मॉल कैप फंड जो है वो करीब 150 से भी ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख के बैठा हुआ है, तो इतने ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड होने का क्या कारण है? क्या ये ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है?
ओके, यस योगेश.
जी yes, तो जो आपका पहला सवाल था स्ट्रेस टेस्टिंग के ऊपर, एक्चुअली ये जो एक चीज निकाली है सेबी ने कि ये फंड्स को घोषित करना है कि कितने टाइम में उनका पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो सकता है, मतलब कि अगर आपके जैसे आम निवेशक उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं और वो निकालना चाहते हैं, और ऐसे अगर बहुत सारे एक साथ निवेशक निकालना चाहेंगे तो वो फंड्स रिडीम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप तक आपका पैसा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो पहले मैं कहना चाहूंगी इसके जो रिजल्ट्स आ चुके हैं ये एक्चुअली एक मंथली डिस्क्लोजर की तरह बना दिया है, जैसे आपका पोर्टफोलियो आता है उसी पोर्टफोलियो पे ये वाले नंबर्स भी प्रोड्यूस करके एक इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंट करे जाते हैं, और आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे एम्फी की वेबसाइट पे मिलते होंगे। बट इनका एक रिटेल इन्वेस्टर को बस इतना करने की जरूरत है कि वो पता रखें कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये नंबर्स क्या दर्शा रहे हैं, उसमें उतना ज्यादा ना घुसे, क्योंकि एक चीज जो इम्पोर्टेंट होती है मिड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो होता है इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखते रहेंगे, तो ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े से एकेडमिक हैं कि इस महीने ऐसा हो गया तो इसका ये असर होएगा, बट कोई कह नहीं सकता कि जब एक्चुअल में जैसे कोविड जैसा सिनारियो आ गया था तो तब तो हो सकता है जो बहुत ही बढ़िया फंड्स हैं वो भी ये सब नहीं कर पाते। तो इस वजह से एक नंबर पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस नहीं कर सकते, आप ये जरूर देख सकते हैं कि आप जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका एक फंड मैनेजर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, और उस फंड मैनेजर पे आप छोड़ दीजिए कि वो कैसे मैनेज करते हैं।
yeah.
जो आपका
एंड ही ऑल्सो स्पोक अबाउट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप,
सो आप बिल्कुल आपका जो एक ऑब्जर्वेशन है वो सही है, वो फंड काफी ज्यादा स्टॉक्स लेके बैठा हुआ है, एंड जो उनके फंड मैनेजर है समीर रच, उनसे जब भी हमारी लास्ट बात हुई थी और इसी बात पे चर्चा हुई थी तो ये टॉपिक जरूर उठा था। एक्चुअली आप देखेंगे तो फंड अपने में बहुत बड़ा फंड हो गया है, तो इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने काफी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरीके की ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, बट अगर आप उसके परफॉर्मेंस नंबर्स देखेंगे तो वो आपको खुद ही बयान कर देंगे कि वो उतना ओवर डाइवर्सिफाई करके भी एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में छोटे टर्म में सफिशियंट परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहा है।
राइट, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टेक अवर नेक्स्ट कॉलर। वी हैव रमेश जॉइनिंग अस फ्रॉम मुंबई। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा मैम।
गुड इवनिंग।
Yeah. मेरी क्वेरी एक है कि मेरा लड़का जो एनआरआई है एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ डू वी गो अबाउट इट, नंबर वन। नंबर टू, ही इज एनआरआई फॉर लास्ट 12 इयर्स बट ही हैज इन्वेस्टेड अर्लियर ऑन, सो डू वी हैव टू रिडीम ऑल देम एंड स्टार्ट अ फ्रेश फॉर एनआरआई, प्लीज गाइड।
जी रमेश जी, एनआरआई डेफिनेटली एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ही फंड्स होते हैं जो ये अलाउ करते हैं, और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस समय ये मेरे टिप्स पे नहीं है कि ऐसे कौन से फंड्स हैं जो अलाउ करते हैं, बट रेस्ट अश्योर्ड आप एक बार नेक्स्ट टाइम फिर फोन करिएगा और मैं ये डिटेल्स के साथ आपको बता पाऊंगी।
और जयपुर से हमारे श्रोता जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
हाँ धन्यवाद मैडम। जैसे इतने दिन मार्केट मंत्री पे सुनने पे यही मालूम पड़ा कि एक दो फंड से आदमी का काम चल जाता है, ज्यादा फंड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैं ये पूछता हूँ कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है क्या, मतलब उस पर SIP करना चाहिए, पहला प्रश्न ये है, और एक दो मल्टी कैप फंड का नाम बता दें।
जी हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है पोर्टफोलियो में, एंड ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता, क्योंकि जितने फंड्स हो जाते हैं उतना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है कि कितना ट्रैक करें, तो एक दो फंड से आपका काम हो जाता है। और जो आप बोल रहे हैं कि मल्टी कैप फंड के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको पहले इतना बताना चाहूंगी कि ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं इनके थोड़े रिस्ट्रिक्टेड मैंडेट्स होते हैं, इसका मतलब कि ये कुछ प्रतिशत हमेशा ही लार्ज में रहेंगे, मिड में रहेंगे और स्मॉल में रहेंगे। जहां तक नाम की बात है, मैं आपको बता पाऊंगी कि आप निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड देख सकते हैं, वो एक अच्छा फंड है, काफी बढ़िया प्रदर्शन भी रहा है उसका लंबे समय में भी और छोटे समय में भी। यहां पर जो लंबे समय की बात होगी वो मल्टी कैप खुद ही एक कैटेगरी काफी न्यू है, अभी हाल फिलहाल में इन्हें 3 साल हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये निपॉन का फंड देख सकते हैं, और एक आप जो थोड़ा ठीक ठाक फंड है वो आईटीआई का मल्टी कैप फंड है, बट आपका काम निपॉन से हो जाएगा।
बट स्नेहा, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स, यू नो मेनी अ टाइम्स पीपल कंफ्यूज बिटवीन फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप, सो व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू?
Right. To highlight the difference, actually FlexiCap, as the name suggests, has that much flexibility in its name, right? So they are go anywhere funds and they give a fund manager flexibility to invest in large, mid and small, and there are no restrictions for the kind of percentage allocations the fund manager has to look for, large, mid, small. So you know, the way the markets are moving and what the fund manager feels is favorable for the portfolio and the investors invested, they can easily, you know, switch from a certain bit of small to large or vice versa. But when it comes to multi-cap, there are restricted mandates that, you know, a fund manager has to have this much allocation in large, this in mid, and this
in small. So you cannot exceed that ceiling.
Absolutely. Okay. Absolutely.
और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं। संजय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं?
मैडम, हाउ टू फाइंड आउट दैट इफ एनी मार्केट कैप इज इन बबल जोन आर नॉट, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस?
सो ही इज एक्चुअली आस्क्ड द मिलियन डॉलर क्वेश्चन।
The answer to the million dollar question is a squeezy one, which is that nobody can entirely with surety actually say ki kaun sa asset class bubble zone, kaun sa market cap bubble zone mein hai. Agar haal filhaal ke numbers dekhe jayen to experts bilkul mante hai ki mid or small cap jo segments hai wo kaafi zyada inflated hai, unke prices kaafi zyada boost kar chuke hain, but usme bhi aap dekhenge कि और ये आम ये एक्सपर्ट्स भी बिलीव करते हैं कि देर आर ओनली अ सर्टेन पॉकेट्स विच आर इन्फ्लेटेड, एंड यू नो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर आई वुड से वन कैन डेफिनेटली लीव दैट टू अ फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर टू फाइंड आउट।
ओके, एंड बट द यूजुअल सस्पेक्ट, यू नो वेन एवर पीपल टॉक अबाउट ओवर हीटिंग और बबल बिल्डअप, द यूजुअल सस्पेक्ट हैपन्स टू बी द स्मॉल कैप। इज इट द एक्चुअल केस और इज इट जस्ट अ परसेप्शन?
नो, so actually markets are always rotating,
yeah.
Right, and whenever it's a 360 degree kind of a turn, it happens to be a small cap zone that comes up in the spotlight, one can say.
Yes.
But no, actually that can happen with any kind of market cap, but usually when you see these smaller companies which have in the long term the growth potential is max there, that is why you are investing in it for a long haul, so that is why those kind of prices inflated you see, but the point being that one has to stick to for the entire market cycle to play out and for their investment horizon, which should be a long one for a mid and small cap kind of allocation.
That's right.
Yeah.
Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra, and as you know, Sundays are reserved for mutual funds and related issues. We are talking about mutual funds, and our expert in the studio is Sneha Suri, who is giving out all the clarifications and answers to all the queries. So if you have any question, query or doubt related to mutual funds, just pick up the phone and talk to our expert in the studio. Our phone numbers 2331-4444, 2331-0464 and 2342-1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. Sneha, to talk about basic investing, especially from a layperson's viewpoint, I want you to elaborate on how to go about investing in mutual funds, especially when it's a beginner, a fresher who is wanting to come into this particular segment of mutual funds.
Right, and assuming that the beginner or fresher has a relatively, a longer time horizon, given that the person is big, starting.
Is 5 to 7 years fine?
Yeah, absolutely. Okay. That is sufficient for a long time horizon, because one has to stay invested, as I was mentioning, to witness the market cycles and then,
reap the benefits.
Absolutely, the returns generated.
Yeah.
So, as for a beginner, if a person doesn't really have any kind of exposure to the ups and downs that the markets can, subject one to, in that case, a particular category called as aggressive hybrid funds is the one that can be the mainstay for that particular newbie, if I can say that. Because what this category beautifully does is that you are investing some 70-75% into equity shares and some 30-35% into debt. So whenever the market is actually waving from the upside, you are actually benefiting at least 70% of the 100%. And when the market takes you to a downswing, in that case, that 30% helps provide that stability so that you are protected. So that works pretty well for a newbie. Yeah.
और उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता चंद्रमौली जी लाइन पे हैं. चंद्रमौली जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर. मेरा ये सवाल था, मैंने दो म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, एक एचडीएफसी का डिफेंस फंड है और एक आईसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है. तो मुझे इन्होंने लगभग एक महीने से मैंने चालू किया है और लगभग 7% का मुझे रिटर्न दे दिया है. मैं एक और म्यूचुअल फंड खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या इसी के मैं आगे इसी को नया खोल लूँ या फिर कोई और मैं फंड देखूँ. थैंक यू.
जी, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी पहले तो कि ये जो दोनों फंड्स आपने बताए वो एक ही एएमसी के हैं, एचडीएफसी जैसे आपने कहा, और दूसरा ये दोनों ही सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हैं. आपने एक बताया डिफेंस और एक बताया आपने इंफ्रा. तो पहली बात मैं आपको बोलूंगी, आपको एक्चुअली मेरा सजेशन होगा कि आप एक तीसरा फंड देखिए और जो कि एक अलग एएमसी से होगा, तो आपकी एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन रहेगी. और थोड़ा सा एक ये मानना है मेरा कि जब आप सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में रहते हैं ना, तो जब वो सेक्टर्स अच्छा कर रहे होंगे तब आप डेफिनेटली बेनिफिट्स रीप करेंगे, बट जब वो सेक्टर्स नहीं कर रहे होंगे आप मार्केट से बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टेड नहीं रहकर आपके लिए नुकसान हो सकता है. तो यहां पर आप एक जो कैटेगरी हम जिसपे चर्चा भी कर रहे थे, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उसका चुनाव कर सकते हैं. और यहां पर मैं आपको फंड्स भी स्पेसिफिकली बता सकती हूं. जैसे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं, वो आपके लिए जब जो सेक्टर फंड मैनेजर को अच्छा लगेगा उसमें वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो उस हिसाब से आपको सेक्टर सारे सेक्टर्स जो जो फेवर में होंगे उनका एक्सपोजर भी मिलेगा, अलग अलग मार्केट कैप्स का भी मिल जाएगा. और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो पराग पारिक एज एन एएमसी है, ये काफी अच्छे से मैनेज करते आए हैं अपने फंड्स, तो आप ये वाले फंड में स्टार्ट कर सकते हैं. बट ध्यान रखिएगा ये इक्विटी फंड है, आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करिएगा.
और चलते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर. लगातार 6 सप्ताह तक बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में इस सप्ताह 2.2% की गिरावट दिखाई दी. अमरीका में मुद्रास्फीति को लेकर जारी चिंता और मध्य पूर्व में तनाव कम होने के चलते ऐसा हुआ. पिछले वर्ष दिसंबर के बाद से सोने के मूल्य में यह सबसे बड़ी गिरावट है. सप्ताह के अंत में सोने का मूल्य $2,338 प्रति औंस दर्ज किया गया. मध्य पूर्व में तनाव और संघर्ष बढ़ने की आशंका के चलते सोने के मूल्यों में बढ़ोतरी का रुख बना हुआ था. 12 अप्रैल को इस कीमती धातु का मूल्य $2,431 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर चला गया था, लेकिन आशंकाएं कम होने के बाद मूल्यों में रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले लगभग $100 की गिरावट दर्ज की गई. देश में सोने का मूल्य इस महीने में अब तक लगभग 5% बढ़ चुका है. मार्च में भी 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.
Well, let's continue with phone calls, and joining us next is Suresh from Noida. Good evening, Suresh, and what's it that you want to talk about?
Yeah, mera Neha ma'am se question hai.
Ji.
Ye hybrid fund aur balance advantage fund, dono mein kya antar hai? Aur mera kuch investment pehle HDFC Prudence Fund mein tha, kuch saal pehle, jo ki unhone change kar diya hai usko बैलेंस एडवांटेज फंड में. तो मुझे इसमें बना रहना चाहिए या इसमें कुछ शिफ्ट करना चाहिए हाइब्रिड फंड? थैंक यू.
यस नेहा.
हाँ जी, तो जो आपका पहला सवाल है कि हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज में क्या फर्क है, तो पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स अपने में ही एक हाइब्रिड कैटेगरी ही होता है. तो मुझे लगता है आप पूछना चाह रहे हैं कि अग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज में क्या फर्क है. तो उनका फर्क ये है कि जैसे मैं बता रही थी, अग्रेसिव हाइब्रिड एक फिक्स्ड अमाउंट अपना फिक्स्ड एलोकेशन इक्विटी में रखता है और एक लगभग फिक्स्ड डेट में रखता है, तो वो आपको एक प्रिडिक्टेबल एसेट एलोकेशन दे रहा होता है। और जहां तक बैलेंस एडवांटेज फंड की बात है, उनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन। तो इसके नाम में इसका मतलब छुपा है कि ये जितना इक्विटी और जितना डेट में डालेंगे वो स्टैटिक नहीं रहेगा, तो मतलब हमें पहले से पता नहीं होगा और वो मार्केट मूवमेंट के हिसाब से इक्विटी और डेट में एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये उनमें फर्क हो गया कि डायनेमिक आपको एक मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से एलोकेशन चेंज करेगा, और अग्रेसिव हाइब्रिड जो है वो आपको एक स्टैटिक एसेट एलोकेशन देता है। तो आपको ये पता रहता है कि किस तरीके का रिस्क रिटर्न पे ऑफ या ट्रेड ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये हाल फिलहाल में बैलेंस एडवांटेज फंड काफी ज्यादा फोरफ्रंट पे आए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बस अपने नाम से ही आए हैं। अगर आप इनके रिटर्न्स देखें तो वो इतने कोई खराब नहीं है, बट मेरा एक मानना है कि जो जब आपको पता होता है, जब एक प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर रहता है कि ये यही एसेट एलोकेशन रहेगा, तो जब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप ये चीज जानते हुए कर रहे हैं। बैलेंस एडवांटेज में आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट आपको बस इतना देखना चाहिए दैट यू नो द स्ट्रैटेजी दैट द फंड इज फॉलोइंग। एंड क्योंकि आप कह रहे हैं आप HDFC प्रूडेंस में थे और उसको फिर उन्होंने बैलेंस एडवांटेज बना दिया था, तो जहां तक बैलेंस एडवांटेज फंड की बात है, ये बिल्कुल ठीक ठाक फंड है। और अगर आप इसमें बने, आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चल रही है, तो आप चलते रहने दे सकते हैं, उस चीज से अभी कोई आशंका नहीं है।
एंड स्नेहा, आई एम श्योर यू विल अग्री दैट इन द लास्ट यू नो 2-3 weeks गोल्ड प्राइसेस हैव कम इन टू शार्प फोकस एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू नो इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, ऑल्दो इट सीम्स एज इफ इट इज हिटिंग अ पीक। बट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, इफ समवन वांट्स टू यू नो गेट द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एज वेल, कैन द पर्सन डू इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स?
एब्सोल्यूटली, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल एक माध्यम है, और एक ETF जिनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है वो भी गोल्ड के होते हैं। तो वो बेसिकली आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड जो बाजार में बाय एंड सेल होते हैं, बेसिकली ट्रेड होते हैं। तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स दोनों ही माध्यम है जिनसे जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट ETF के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बट मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो एक इन दोनों से भी बेहतरीन ऑफरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में, वो होती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड्स आप RBI की RBI रिटेल डायरेक्ट वेबसाइट है जहां से आप एक अकाउंट बना के खरीद सकते हैं। इनके सीरीज ऑफ इश्यूज निकलते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इनका ये बेहतरीन क्यों है बाकी दोनों प्रोडक्ट से, वो इस वजह से क्योंकि ये जो गोल्ड के प्राइस में अप्रिसिएशन होती है वो तो आपको मिलता ही है रिटर्न के तौर पर, बट एक 2.5% उससे ओवर एंड अबव मिलता है, जो कि एक तरीके का शॉर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बस ये होता है कि ये 8 साल का होता है और 5 साल तक के लिए आपको बने रहना होता है, तो आप काइंड ऑफ लॉक इन कह सकते हैं। एंड एक और खास बात ये है कि इस पे जो कैपिटल गेन होता है वो आपका टैक्स फ्री होता है, तो उस हिसाब से SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ज्यादा बेटर माध्यम हो जाता है। बट मैं यहां ये भी कहना चाहूंगी कि गोल्ड आप चाहते हैं तो आप ऐसे अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10-20% शायद से कर पाएं, बट वैसे 100% इसकी इन्वेस्टमेंट को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आप गौर फरमाएं तो गोल्ड का एक लिमिटेड पोटेंशियल होता है जो वो आपको फॉर ग्रोथ या फॉर वेल्थ क्रिएशन दे सकता है, बिकॉज इट इज नॉट रियली अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी लाइक अ शेयर इज, बिकॉज अ कंपनी इज ग्रोइंग एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, यू आर ग्रोइंग विद इट, और वो उससे हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है। गोल्ड का थोड़ा कंजम्पशन साइड पे ज्यादा रहता है।
नहीं, मतलब ये तो ये आप व्यक्तिगत जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके फायदे नुकसान के लिहाज से बता रही हैं या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से कह रही हैं?
एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए।
राइट, एंड वुड यू लाइक टू नेम अ कपल ऑफ यू नो म्यूचुअल फंड्स विच आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड?
राइट, सो एक्चुअली बहुत सारे फंड्स हैं जो आ चुके हैं, डिफरेंट AMCs, ऑलमोस्ट हर AMC का ही आजकल गोल्ड फंड होता है। तो जहां तक इनको खरीदने बेचने का सवाल है, मैं एक्चुअली आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप SGB के इश्यू होने का वेट करिए, फिर आप उससे अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिएगा।
राइट, And before we take more phone calls, let's take a look at some of the other news items that we are tracking for you this evening. The Ministry of Mines will hold Critical Minerals Summit, enhancing beneficiation and processing capabilities in New Delhi tomorrow. The two-day summit is a pivotal event designed to foster collaboration, share knowledge, and drive innovation in the field of critical mineral and processing. The ministry said the summit is set against the backdrop of India's rapid economic growth and ambitious clean energy targets, which underscore the urgent need for securing a domestic supply of critical raw materials. The summit will bring together a diverse array of Indian and international stakeholders, including industry leaders, startups, government officials, scientists, academics, and policy experts.
Sneha, जो आपने बहुत इस तरह की जानकारी तो दी रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिहाज के म्यूचुअल फंड में वो किस तरह से और कहां कहां निवेश कर सकता है, लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो किस पॉइंट पे कैसे किस प्रोसेस के माध्यम से वो एग्जिट करे और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जिट की, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को भी जानकारी दें।
बिल्कुल, तो जहां तक एग्जिट की बात आती है, मैं बोलना चाहूंगी कि वहां पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती। आपका गोल अगर पास आ गया है तो मार्केट से आपको वो पैसा निकालना ही निकालना है, क्योंकि मतलब फॉर द रीजन दैट यू हैड इन्वेस्टेड इन इट हैज नाउ रीच्ड इट्स लिमिट। तो आप चका जब गोल आ जाए आप निकाल लीजिए। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई एसेट एलोकेशन बनाया हुआ था कि मैं 60% इक्विटी में करूंगी, 40% डेट में करूंगी, और मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से वो जो 60% है वो अब 80% हो गया है, एंड एट द सेम टाइम जो डेट है वो हमारा कम हो गया है। तो इस एसेट एलोकेशन टू रिस्टोर बैक टू योर ओरिजिनल एसेट एलोकेशन, तब आपको डेफिनेटली इक्विटी से सेल करके या एग्जिट करके जो आप कह रहे हैं डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जिन फंड्स में आप इन्वेस्टेड हैं, जिन इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्टेड हैं, वो फंड मान लीजिए कोई एक फंड कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो अल्टीमेटली एक पुअर फंड ही बन गया है, तो वहां आप जरूर एक कॉल ले सकते हैं कि यहां इस फंड से निकलना चाहिए।
नहीं, प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से भी तो इन्वेस्टर इस तरह का कोई फैसला ले सकते हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
नहीं, तो एक्चुअली मैं बोलूंगी जो आम निवेशक होता है, जो यहां पे फोन करके जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको ऐसे प्रॉफिट बुकिंग टाइप की स्ट्रैटेजीज में इतना पढ़ना नहीं चाहिए। उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन और फ्रेमवर्क जो है उससे स्टिक करके रहना बहुत जरूरी है, और आसपास बहुत नॉइज होती रहती है, उससे एक्चुअली ब्रेक फ्री करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पे फोकस रहना चाहिए।
राइट, एंड स्नेहा, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, ऑल्सो टेल अस अबाउट द यू नो एक्सपेंसेस एंड द एंट्री एंड एग्जिट लोड्स। आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट हैज बीन रैशनलाइज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स।
Right, so talking about entry loads, so those have actually, now we no more have entry loads in the system, in the mutual fund system, that is a thing of the past now. As for exit loads, we definitely have exit loads, and every category actually, every fund actually has a different one. Usually on the debt side, we have exit loads maybe somewhere around... For a lesser time period, since right. The investment in debt is not for that long a time period. For on the equity side, exit load actually helps so that जो लोग थोड़े ज्यादा समय के लिए invested रहना चाह रहे हैं वो घबरा के एकदम निकल ना जाए, उनको okay. थोड़ा बहुत रोकने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं exit load markets में है।
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। स्नेहा जी इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू,
एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल आवर कॉलर्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टुडेज प्रोग्राम। एंड बिफोर वी क्लोज, अ क्विक रिमाइंडर ऑफ द टॉप स्टोरीज। एज मेनी एज 211 कंपनीज टू अनाउंस क्वार्टरली रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक। Global gold prices declined 2.2% this week after 6 weeks of continuous surge. And Ministry of Mines to hold Critical Minerals Summit in New Delhi tomorrow. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant evening. Market Mantra.